ऐसे नहीं देंगे लोगों ने। भगवान का भक्त समझकर लोग प्रणाम करते हैं, खिलाते हैं, बल्कि रोज जो खाते हैं उसे स्पेशल बनाकर खिलाते हैं। अद्भुत हमारा देश है कि यहाँ अजीब अजीब चीजें हैं। आप दूसरे जगह खाइए तो खाने के लिए आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आप खाए हैं तो आप फीस देंगे। लेकिन भारत ऐसा देश है कि आदमी खिलाता है और खाने के कारण ऊपर से पैसा देता है, ये आप खाए हैं इसलिए लीजिए। तो वह इसीलिए होता है कि जनता की भावना है कि यह भगवान का जन हुआ है, भगवान का भक्त हो गया है, इसलिए इसको चिंता ना हो खाने पीने की, इसको खिलाना चाहिए। तो भगवान का हो जाने पर तो रोटी लुगा नीके रखे आगे हूँ कि वेद भाखे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो रोटी लुगा नीके रखे, ये रोटी भी मिलेगी और कपड़ा भी मिलेगा पहनने को, और आगे जो वैकुंठ मिलेगा वो तो वेद कह ही रहा है। तो क्या चाहिए, इस जीवन में भी कोई कमी नहीं रही, खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है, और बाद में भगवान के पास जाएंगे। रोटी लुगा नीके रखे आगे हूँ कि वेद भाखे, और वेद कह रहा है कि आगे वैकुंठ मिलेगा, तो वेद तो झूठा हो नहीं सकता है। और वर्तमान में सब मिल ही रहा है तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो इस तरह से भगवान का भक्त होने पर सब कुछ से मिलता है। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की लीलाओं के आस्वादन में और भक्ति करने में जीव का स्वरूप सिद्ध अधिकार है, स्वरूपानुबंधी अधिकार कहते हैं। जैसे कोई पुत्र है तो पुत्र होते ही उसके उसका पिता की संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है। इसीलिए पिता की संपत्ति पर अधिकार है कि वह पुत्र है, और कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो, केवल पुत्र है। तो इसी तरह से हम लोग श्री कृष्ण के ही अंश हैं, अतः श्री कृष्ण की लीलाओं का सुख लूटना, श्री कृष्ण के भजन का आनंद लेना हमारा स्वरूपगत अधिकार है। और बाकी और जो कुछ भी हम सोचते हैं कि हमारा ये राइट है, हमारा वो राइट है, हो सकता है कि हमारा वो अधिकार न हो, लेकिन यह तो अधिकार है, भजन करने का तो अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कभी कभी कोई कोई भक्त ऐसा सोच सकते हैं कि अरे हमारा कहाँ भाग्य है कि भगवान के इन लीलाओं का हम अपने हृदय में अंकन कर सकें, या भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में आ सकें। आप पढ़ सकते हैं रासलीला की कथा कहकर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ आदर के साथ अनुदिन इस रासलीला का श्रवण और कीर्तन करता है, शीघ्र ही उसके हृदय का काम विकार नष्ट हो जाता है और वह भगवान का प्रेम पाता है, ऐसा वे कहते हैं। तो इस प्रकार से रासलीला का मूल वक्ता ये बोल करके क्या कह रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है, एक विज्ञापन दे रहा है कि आप इसे सुनिए, पढ़िए, धीर बन करके अनुदिन इदम आदरेण श्रद्धया। रासलीला में कह रहा हूं तो एक उपलक्षण कह रहा हूं, इससे मतलब है भगवान की लीलाएं प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, खास करके श्रीमद् भागवतम, तो इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन भगवान के कनेक्शन में आ रहे हैं, भगवान के रूप गुण लीला आदि के साथ रोज रोज संपर्क बढ़ रहा। तो वह संपर्क जमा होते होते हृदय पर संस्कार डालते डालते एक दिन ऐसा छा जाता है कि उसके अलावा संसार का और कोई दृश्य अब आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह सत्य है, चिन्मय है। जगत का रूप हमारे हृदय में छाया रहता है, सपना में भी जागृत में भी आप देख ही रहे हैं किस तरह से, भुलाने पर भी नहीं भूलता है। और यह क्षणिक है, कोई संबंध नहीं है आत्मा का, क्षणिक भी है और इसके साथ ही साथ दुखद है। कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द, कोई भी चिंतन एक दुख डाल करके चला जाता है, सुख नहीं देता है। लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण या भगवान की कथा का श्रवण यह अक्षय सुख का संस्कार डाल करके जाता है, वो जमा हो जाता है सुख। और जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस में रहते हैं, अभ्यास में रहते हैं, तो एक दिन हृदय बिल्कुल सुखमय हो जाता है। ऐसा जैसा कहा गया, श्रृणवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्थो ये भद्राणी विधुनो ते सुहृषताम नष्ट प्राय सभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य चेत एतैर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। सब दोषों से मुक्त होकर के चित्त सत्व में स्थित होता है और प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। ये भक्ति का प्रभाव होता है। तो एक ही दिन की भक्ति का प्रभाव नहीं हुआ, वो जो थोड़ी थोड़ी भक्ति करते जा रहे हैं, श्रवण कीर्तन करते जा रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आज के जप का वो संस्कार पड़ चुका है। कभी कभी कोई किसी किसी बात का प्रत्यक्ष पता नहीं चलता है, लेकिन वो घटना हो जाती है। जैसे मान लीजिए, आप एक विपरीत उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आप फोन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आज जो फोन किया उसका बिल बन गया, भले आज ही कागज आवे या ना आवे, वो बिल बनता जाता है। हम देखते नहीं हैं कि बिल कहाँ बना, लेकिन वो तो बन जाता है। ये मनुष्यों की व्यवस्था है, तो ईश्वर की कैसी व्यवस्था होगी। तो आज जो भगवान के नाम को बोले, भगवान को प्रणाम किए, भगवान का दर्शन किए, वैष्णव की सेवा किए, भागवत सुने, तो वो तो संस्कार वहाँ जमा हो चुका है। और फिर करते हैं वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। इसीलिए क्रमे क्रमे सेह भक्त है वे उत्तम, धीरे 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 वह भक्त उत्तम भक्त हो जाएगा। और भगवान की लीलाएं बिना प्रयास के ही हृदय में उदित होती रहेंगी। उस समय भक्त को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि प्रेम उत्पन्न हो जाए भगवान में, तो एक नाम लेते ही आंखों से अजस्र अश्रु धारा बहने लगती है। एक नाम लेते हैं तो वो दशा आती है श्रवण कीर्तन से, भक्ति से। उस दशा की कामना करते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में, नयनम गलदस सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निशितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। हे प्रियतम, हे कृष्ण, वह दिन कब आएगा कि आपका नाम लेते ही मेरा शरीर पुलक से युक्त हो जाएगा, आंखों में आंसू बहेगा और गला रुंध जाएगा, गदगद हो जाएगा। कब वो दशा आएगी, कदा भविष्यति, कब वो दशा होगी। यही साध्य है, यही परम पुरुषार्थ है। तो उसके लिए यह श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन जले करा ऐसे चार। उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण बताया गया, जिसके हृदय में भगवान का रूप, भगवान की चाल, भगवान का नृत्य या भगवान का विलास देखना, हंसना, विविध प्रकार से लीलाएं करना, वो सारी उदित रहती हैं। और एक क्षण के लिए भी जिसके हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं विस्मृत होती हैं, चरण कमल नहीं विस्मृत होता है, वह है वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, अब सर्व लक्षण सार बता रहे हैं। जितना भी लक्षण बताए भक्त का, उसमें से अब सार बता रहे हैं। विसृजति हृदयम नजस्य साक्षात हरिरवशाभिहितोऽप्यघोघनाशः प्रणय रसनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः। एक तो भक्त भगवान का इस तरह से चिंतन करता है, प्रयास करता है, लेकिन उत्तम भागवत वह है, भागवत प्रधान उक्त, जिसके हृदय को श्री कृष्ण भी कभी नहीं छोड़ पाते हैं। जैसा मैंने टेलीविजन का उदाहरण दिया था, तो मुझे उस समय बड़ा खराब लगा कि केवल भगवान का चित्र नहीं आता है हृदय में, तो विसृजति हृदयम न जस साक्षात हरि, साक्षात श्री कृष्ण महाभागवत के हृदय को नहीं छोड़ पाते हैं, न विसृजति। तो यह प्रश्न होगा कि अरे कभी तो निकल करके जाएंगे इधर उधर, क्यों बंद रहते हैं। तो जैसा आपने सुना कि वृंदावन, गोवर्धन या जमुना जी, सब कुछ तो भक्त के हृदय में ही उग आता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन रहता नहीं है, वृंदावन रहता है लेकिन वो अपने को एक्सपैंड करता है। तो वृंदावन भक्त के हृदय में उदित होता है और उसमें श्री कृष्ण रहते हैं, तो श्री कृष्ण सदा वृंदावन में ही रहते हैं। अतः भक्त के हृदय में ही जब वृंदावन है तो उसे वो बाहर जाएंगे क्यों। विसृजति हृदयम न जस साक्षात हरि, साक्षात हरि न कि मनोमयम, कल्पना पूर्ण नहीं कि भक्त कोई चिंतन कर रहा है, वास्तव में भगवान भक्त के हृदय में उदित हो जाते हैं। जैसे चौथे स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो पांचवा महीना बीतने पर छठे महीने में भगवान उनके हृदय में डायरेक्ट उतर गए और लिखा गया है कि उन्होंने ब्रह्म को, भगवान को धारण किया, उनके हृदय में साक्षात भगवान उतर गए। और मनोमय ध्यान मात्र नहीं था, और इसका प्रमाण है कि जब श्री भगवान उनको वर देने के लिए आए तो ध्रुव महाराज उस समय खड़े होकर अंगूठे के बल से और भगवान का ध्यान कर रहे थे। मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे बिजली चमकती है, इतना स्पष्ट दिखती है, उस तरह से भगवान हृदय में बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, क्योंकि विद्यमान थे और ध्रुव महाराज देख रहे थे। तो उनका शरीर का रोम रोम आनंद से बिहवल था, देख रहे थे खड़े होकर। तो भगवान जब आए तो भगवान तो ये सोचने लगे कि कैसे मुझको देखेगा, आंखें कैसे खोलेगा। तो जो बाहर रूप था वही तो भीतर था, इसलिए ध्रुव महाराज देखने में विभोर थे, विभोर थे। तो भगवान ने ये कार्य किया कि वे अपने भीतर के रूप को अकस्मात तिरोहित कर दिए। जब तिरोहित कर दिए तो ध्रुव महाराज बिल्कुल विकल हो गए। विकल होकर के जैसे ही आंख खोले देखते ही देखते हैं कि भीतर जो भगवान थे वही बाहर उपस्थित। तब ये लगता था कि भुजाओं से भगवान का आलिंगन कर लेंगे, चरणों का, नासिका से सूंघने जैसा कर रहे थे, जिह्वा से चाटने जैसा कर रहे थे, इतना भगवान उनको प्रिय लग रहे थे। और फिर प्रणाम किए, फिर भगवान की स्तुति किए शंख छुआ लेने पर। तो ध्रुव महाराज के हृदय में जो भगवान का रूप उभर रहा था वो डायरेक्ट भगवान, इसलिए यहाँ पर जो शब्द दिया जा रहा है साक्षात हरि, साक्षात श्री कृष्ण महाभागवतों के हृदय में उदित रहते, छोड़ नहीं सकते। विसृजति हृदयम न जस साक्ष, क्यों नहीं हृदय का त्याग करते हैं। तो एक बहुत ही साहित्यिक शब्द में कहा जा रहा है, क्योंकि धृतांग्री पद्म, चरण में जंजीर है, कैसे भाग सकते हैं। कैसी जंजीर है, लोहे की है कि सोने की है, नहीं, प्रणय रसना, प्रेम की रस्सी रहती। भक्त प्रेम की रस्सी से भगवान के चरणों को इतना मजबूत बांध लेते हैं कि अब वो जा ही नहीं सकते। तो प्रेम की रस्सी से भगवान बंधे रहते हैं। अब कोई वास्तव में बाहर से कोई रस्सी की कल्पना नहीं करनी चाहिए कि भगवान के सुंदर चरण में कोई रस्सी बंधी है, प्रेम की जंजीर बंधी है। इतना प्रेम है श्री कृष्ण से कि भगवान उसके हृदय से जाते ही नहीं। भगवान तो प्रेम रस के भोगने वाले भ्रमर हैं। भंवरा जैसे कमल का रस भोगता है, उस तरह से भगवान अपने भक्तों के हृदय का प्रेम रस भोगते हैं। परम रसिक, रसिक शिरोमणि। तो भगवान इतना आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं लेते हैं, अपने धाम में भी नहीं लेते हैं, जितना भक्त के हृदय में लेते हैं। तो उदित रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अब भक्त भगवान को कैद कर लिया है इसलिए अब गोचारण के लिए नहीं जा सकते हैं या रासलीला के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि विसृजति हृदयम न जस साक्षात है। ये तो एक वैष्णव का कहा गया है, और मान लीजिए एक ही साथ कोटि कोटि वैष्णव हो जाएं तब तो सब पकड़ेंगे, तो सबके घर में रहना ही पड़ता है भगवान और साक्षात ही। ऐसा नहीं कि केवल मनोविलास मात्र, मनोकल्पना मात्र, वहां से मान रह सकते हैं कहीं समय में। प्रणय रसनया धृतांगी पद्म, भगवान के चरण पद्म को, चरण कमल को प्रेम की रसना से भक्त पढ़ते हैं। तो प्रेम की रस से पकड़ लेते हैं का अर्थ यह है कि भगवान स्वयं ही हृदय से नहीं जाना चाहते हैं, तो प्रेम का आस्वादन करते हैं। और भक्त तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले सकता है, वो भगवान को कब हृदय से निकालता है? वो निकालना नहीं चाहता और भगवान निकलना ही चाहते है। तो ये प्रेम के भूख भगवान हृदय में ही बस रहते हैं। रामचरित मानस में स्वामी तुलसीदास जब हनुमान जी की वंदन किए हैं तो कहते हैं, बंदौ पवन कुमार खलबल पाव ज्ञान सम, जास हृदय आगार बस ही राम सर चापद। मैं श्री हनुमान जी के चरण की वंदना करता हूँ जो खल रूपी जंगल को जलाने के लिए आग समान, और जिनके हृदय में भगवान धर्मान लेकर के सा बसते, जा हृदय आगार बस ही राम दर चाप धर। सरकार बाण और चाप धनुष, धनुष बाण लेकर भगवान श्री राम हनुमान के हृदय में सदा रहते हैं, वास्तव में रहते हैं, केवल हनुमान जी ध्यान नहीं करते हैं। ऐसी घटना है एक बार की कि एक बहुत बड़ा कारीगर एक सोने का हार बनाया, बहुत कीमती रत्न का हार बनाया, हार बनाकर वह दिया भगवान श्री राम को भेंट दशरथ। तो भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के उस हार को हनुमान जी को दे दिए सबके सामने, बहुत मूल्यवान हार था, हनुमान जी को दे दिया हार। हनुमान जी दांत से फोड़ने लगे उसकी मणियां, बानर है हार हनना क्या जाए, मानो ऐसे भाव व्यक्त कर रहे, बानर को क्या ज्ञान होता है, नर इधर चश्मा चिनते हैं तो पहते नहीं है। तो हनुमान जी तोड़ने लगे तो जौ ही वहीं पर बैठा था, उसको बड़ा इस बात से दुख लगा, क्या इस योग्य व्यक्ति को हार दे दिया गया, तोड़ करके सब बर्बाद कर रहा है। एक प्रकार से भगवान भी उसकी दोष दृष्टि होने लगी, क्यों दे दिए इसको, पहले पता होता तो मैं दिया नहीं था, भगवान एक प्रकार से मेरा अपमान किया जा रहा है। तो हनुमान से पूछ दिया, आप क्यों तोड़ रहे हैं हार, क्यों तोड़ रहे? तो हनुमान जी ने सीधा उत्तर दिया, फोड़ फोड़ करके दे रहा हूँ कि इसमें सीताराम जी हैं कि नहीं, अगर इसमें सीताराम जी नहीं है तो हमारे काम की चीज नहीं है। तो पर वो जौहरी का, तो तुम्हारे हृदय तुम्हारे हमें भगवान है, क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे, तुम्हारे भीतर सीताराम है? हनुमान जी कहे कि सीताराम तो है, मैं तो यही अनुभव करता हूँ, सीताराम नहीं हमारे हृदय में तो मैं तो देह को आज ही खत्म कर दूंगा। तो एक चैलेंज हो गया, तो क्या दिखा तुम्हारे हृदय में सीताराम जी हैं? तो हनुमान जी ने कहा हैं, और उस समय राम द्वार में ही हनुमान जी अपने छाती को फाड़ दिखा दिए कि सीताराम भीतर बैठे। तो भगवान वास्तव में भक्त के हृदय में रहते हैं, हृदय आगा बस ही राम सचार धर, उनकी प्रेम के बस में भगवान रहते हैं, तो वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मन में हनुमान जी चिंतन करते थे, नहीं, चिंता और चीज है, और भगवान का डायरेक्ट हृदय में उतर जाना वो अलग चीज है। भगवान अपने सब सौंदर्य माधुर्य विलास हास और लीलाओं के साथ महाभारत के हृदय में उदित रहते हैं, इससे तो हृदय में साक्षात हरि, और हरि शब्द ही हरि जी क्यों दे रहे हैं, हरि शब्द यहाँ अर्थ है पूर्ण मनोहर, नेत्रों के लिए और मन के लिए परम आकर्षक, परम सुंदर। उस वैष्णव राज के वैष्णवाग्रगण के हृदय में भगवान इस उदित रहते अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ, आकर्षण के साथ, इसे भक्त भूल नहीं पाता है। विसृज हृदय न जस साक्षाधरी, कैसे हरि, श्रीधर स्वामी टीका लिखते कथम भूतो हरि अवशा भीतोप्य घौ घनाश जिनका कोई नाम अवस अवस्था में भी ले तो उस व्यक्ति का सारा पाप नष्ट कर देते हरी। ऐसा ये नाम का प्रभाव, जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है कि कोई इतनी श्रद्धा से नहीं अवस अवस्था भी नाम ले तो उसका सब नष्ट हो जाते है। अवश अभिहित अपि अघौघ नाश, अघ ओघ अघ की राशि का नाश होते, संपूर्ण पाप नष्ट कर देते। अवस का क्या अर्थ है? अवस्कार है जानबूझकर के नहीं, जैसे जान पुत्र के स्नेह के बस में नारायण रहेगा, इसको आप अवस्था कहा। और यह जान करके भगवान का नाम तार वाला है, प्रेम देने वाला है, पवित्र करने वाला है, यह जान के लिया जाए तो यह अवस अवस्था नहीं है, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा से नाम लिया जा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन अवस अवस्था में भी जैसे किसी को बुखार आ गया हो और उस समय भी हे कृष्ण हे राम हे हरि ये कहे, इसको अवस अवस्था कहते हैं। कहीं पैर छलक गया, स्खलन हुआ तो हरि हरि हे कृष्ण ऐसा करे, या धूप लगने पर, ठंडा लगने पर, किसी भी तरह से, या संकेत्य पर, संकेत्यम पारिहास्यम वा उस्तोभम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु, तो इसको अवश कहते हैं। किसी भी तरह से यदि श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कोई करता है तो उसकी समस्त पाप राशि को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। ऐसा जिनका अद्भुत प्रभाव है वे भगवान साक्षात भय में रहते हैं। एक बहुत ही सुंदर उक्ति हरि जी कह रहे हैं कि यदि भगवान कभी जाना भी चाहें तो इतना पकड़ लिया गया है उनका चरण कमल की अब जा नहीं सकते। हम लोग देखते हैं पशुओं के पैर को बांधा जाता है वो इधर नहीं सकते, और मनुष्यों में भी जो लोग श्रृंखल हो जाते हैं तो उनको बेड़ी पहनाई जाती है, बांधा जाता है, कितनी परवश अवस्था है। तो क्या भगवान की भी यही परवश अवस्था है? नहीं, प्रणय रसना से बांधा गया, प्रणय रसना प्रेम की डोरी। प्रेम बाहर कोई रस्सी के रूप में नहीं होता है, प्रेम एक अजीब चीज है। इसको एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने प्रीति संदर्भ में वर्णन किया, तो श्री राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं कि अरे सखी, कृष्ण का दर्शन हमारा जी कुछ कुछ सुखी रहता है, मतलब थोड़ा ही दुख होता है, लेकिन दर्शन होने के बाद भेंट नहीं होती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कृष्ण का दर्शन ही ना हो। तो उपमा देती हैं कि जैसे सूर्यकांत मणि है, सूर्य से बहुत प्रेम करता है मणि, वो मणि पुलिंग है, सूर्य से बहुत प्रेम है। सूर्यकांत शिला एक पत्थर होता है जो सूर्य को देखते ही पिघलने लगता है, तो रात्रि में उसको इतना ही दुख है ना कि मलिन रहता है, रात में सूर्य का दर्शन नहीं होता तो मलिन रहता है, लेकिन सूर्य का दर्शन हो जाए तब तो आओ और तप तो हो पिघलने लगता, दुख बढ़ जाता है। तो सूर्य से उसका प्रेम है, सूर्य से और सूर्यकांत मणि से देखिए कितना कनेक्शन है। सूर्य की किरण लगते ही वो पत्थर पिघलने लगता है, पसीना होने लगता है, इसको प्रेम कहते हैं। या चंद्रमा कहाँ है, चकोर कहाँ है, लेकिन बीच में प्रेम की डोरी बंधी हुई है। अवश्य वह डोरी चकोर के तरफ से है, चंद्रमा के तरफ से नहीं। गोपियां कहती हैं कि देखो उद्धव जी, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति है, भले कृष्ण का नहीं है, कृष्ण प्रेम करना नहीं जानते, वो चंद्रमा की तरह है, हम चकोर की तरह हैं। बेचारा चकोर देखता रह जाता है और चंद्रमा डूब जाता है, ये नहीं विचार करता है कि हमेशा आकाश में रहें या चकोर हमको देखता रहे। और कृष्ण जल की तरह है, हम लोग मछली की तरह है, मछली जल से पती है लेकिन निर्दय जल बहती है ताकि वह भी साथ में रहे, तो श्री कृष्ण ऐसे ही है। हम रोती रोती रह गई और अक्रूर के रथ पर बैठकर मथुरा चले गए। कृष्ण में प्रेम नहीं। तो जो कुछ भी मैं यह कह रहा हूं कि प्रेम एक सूक्ष्म रज्जु है। सूक्ष्म रज्जु का रजुकार अदृश्य, वो तो प्रेमी ही अनुभव करता है हृदय से। तो भगवान इस तरह प्रेम के रज्जु से बंधे हैं और प्रेम की रस्सी है, इसीलिए चरण कमल